डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट यशाया 1726 ईसा 54 से 55। 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 26 यशायाह अध्याय 54 और 55 है। खैर, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। हो सकता है कि आप बाहर लॉन में घास काट रहे हो और आपने बाइबल अध्ययन के लिए आने का फैसला किया हो। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ। धन्यवाद। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। धन्यवाद पिता, इसके लिए आपके शब्दों को समझने का एक और मौका। इस कमरे में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के लिए धन्यवाद। हमारे व्यक्तित्वों में, हमारी रुचियों में महान विविधता के लिए धन्यवाद, और दूसरी ओर आपके शब्दों के माध्यम से आपको जानने की हमारी इच्छा में महान एकरूपता के लिए धन्यवाद। और इसलिए आज शाम हमारी यही प्रार्थना है कि आप वास्तव में अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेंगे। जब हम शब्दों और वाक्य विन्यास, वाक्य संरचना, अनुच्छेदों, उन सभी चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आपने स्वयं को प्रकट करने के लिए उपयोग करना चुना है, तो हमारी सहायता करें। हमें उनके आर पार और उनके पार आपके चेहरे तक देखने में मदद करें। हमें आपकी चुनौती को समझने में मदद करें, क्योंकि हम मानते हैं कि हम उन लोगों से अलग नहीं हैं जिन्हें आप लिख रहे थे। कभी कभी हमारे लिए थोड़ा श्रेष्ठ महसूस करना आसान होता है, लेकिन वास्तव में अपने गहरे दिल में हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। हम वे हैं और वे हम हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें चुनौतियों को सुनने, सांत्वना सुनने, प्रोत्साहन सुनने, दर्शन देखने में मदद करेंगे, और हम आपके नाम पर आपको धन्यवाद देंगे। तथास्तु। ठीक है, हम इस उपखंड के अंतिम भाग को देख रहे हैं जिसे मैंने अनुग्रह साधन ऑफ सर्वेंटहुड कहा है। हमने अध्याय 40 से 48 में देखा कि कैसे अनुग्रह दासत्व का उद्देश्य था। जैसे ही हम अध्याय 39 के अंत में पहुंचे, हमने माना कि मामला बिना किसी संदेह के साबित हो चुका है, भगवान पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन फिर सवाल यह है कि हमें हिजकियाह की गलती को न दोहराने के लिए क्या प्रेरित करेगा, विश्वास के जीवन के बजाय एक बार का भरोसा। और हमने कहा कि भगवान ने अपने लोगों को बिना शर्त अनुग्रह दिया, यहाँ तक कि कैद में भी एक होगा उस पर भरोसा करने की प्रेरणा। लेकिन फिर हमने सवाल पूछा, लेकिन कैसे? परमेश्वर कैसे उनके पाप को नजरअंदाज कर सकता है और ऐसा व्यवहार कर सकता है जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और कह सकता है तुम मेरे चुने हुए सेवक हो? और जो उत्तर हम यहाँ इस अनुभाग में देख रहे हैं वह नौकर है। जैसा कि हमने 49 में, 50 में और फिर पिछले सप्ताह विशेष रूप से अध्याय 53 में देखा, सेवक हमारे पापों को माफ करना संभव बनाता है, और भगवान इस मुफ्त अनुग्रह, इस अयोग्य अनुग्रह को हम तक पहुंचाते हैं। अब आज रात हम उस खंड के निष्कर्ष को देख रहे हैं, अध्याय 54 और 55। अध्याय 54 शुरू होता है, गाओ हे बांझ जो सहन नहीं कर सकी, हे तुम जो कभी प्रसव पीड़ा में नहीं पड़े हो, गाओ और ऊंचे स्वर से रो, क्योंकि उजाड़ की संतान ब्याही हुई के संतान से अधिक होगी। अपने तंबू का स्थान बड़ा करो, तुम्हारी बस्तियों के पर्दे फैले रहें। अब आज रात हम उस खंड के निष्कर्ष को देख रहे हैं, अध्याय 54 और 55। अध्याय 54 शुरू होता है, गाओ हे बांझ जो सहन नहीं कर सकी, पीछे मत हटो, अपनी डोरियों को लंबा करें, अपना दांव मजबूत करें। और फिर हम अध्याय 55 पद 1 पर जाते हैं, हे सब प्यासे लोगों जिनके पास धन न हो, जल के पास आओ, आओ खरीदो और खाओ, आओ बिना पैसे बिना दाम दाख मधु और दूध मोल लें। तो यहाँ पहला प्रश्न यह है कि 49 से 52, 12 में प्रमुख नोट यह विश्वास करने के लिए यहोवा का प्रोत्साहन था कि वह उन्हें वितरित करने जा रहा था। यहाँ और शेष अध्याय 54 और 55 में प्रमुख टिप्पणी क्या है? आपको वितरित कर दिया गया है। अब यह भाव प्रत्याशा अब निमंत्रण में बदल गया है। आओ और इसमें भाग लो जो तुम्हारा है। तो फिर हम जो देखते हैं वह 49 से 52, 12 में यह प्रत्याशा है और फिर 52, 13 से 53, 12 में रहस्योद्घाटन है और अब 54 से 55 में निमंत्रण है। तो यह अजीब कविता है जिसे हमने आखिरी बार देखा था सप्ताह इस पूरी चीज के केंद्र में है। प्रत्याशा को निमंत्रण में कैसे बदला जा सकता है? और इसका उत्तर नौकर पूंजी एस ने जो किया है उसके कारण है। अब 54:1-10 तक के इन छंदों में भगवान क्या वादा कर रहे हैं, किस अलंकार का उपयोग किया गया है और इसका इस बात से क्या संबंध है कि सियोन ने पहले खुद को कैसे देखा था? फलदाई बनाम बाजपन, सही। यदि आपको याद हो तो हमने कहा था कि उन पहले अध्यायों में कई स्थानों पर उसे एक विधवा के रूप में वर्णित किया गया है जिसके बच्चे मर चुके हैं, इसलिए उसे अब और बच्चे पैदा करने की कोई उम्मीद नहीं है। अब उसमें एक बाज विधवा भी जोड़ दो। मामला चाहे जो भी हो, भले ही वह दोबारा शादी कर ले, लेकिन उसके कोई और बच्चे नहीं हो सकते। और भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, उजाड़ की संतान उसके ब्याही हुई संतान से अधिक होगी। श्लोक 3, तू विदेश में दाई और बाई और फैलेगा, तेरे वंश के लोग अन्य जातियों के अधिकारी होंगे और उजाड़ नगरों में बसेंगे। अब इसका निर्वासित लोगों के डर से क्या संबंध है? वे किस बात से डरते थे? हटाया जा रहा है, बिल्कुल। एक संस्कृति के रूप में खत्म किए जाने, एक व्यक्ति के रूप में खत्म किए जाने के कारण वे बस गायब हो जाएंगे। और याद रखें, इब्राहिम से परमेश्वर का क्या वादा था? दुनिया को आबाद करो, तुम्हारे पास आकाश के तारों से भी अधिक बच्चे होंगे। तो यहाँ हम एक स्पष्ट रूप से असंगत स्थिति में हैं, जहाँ भगवान ने ये अविश्वसनीय वादे किए हैं और स्थिति की वास्तविकताएं बिल्कुल विपरीत हैं। और यशायाह कहता है, नहीं नहीं, आपके बच्चे होने वाले हैं और वे बच्चे दुनिया भर में फैलेंगे। कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां सब कुछ असंभव लगता है, और हमें बाइबल में ऐसी स्थितियों को याद रखने की जरूरत है जहां असंभव संभव हो जाता है। श्लोक 4 को देखें। क्या आपको याद है कि मैंने पुराने नियम में शर्म के बारे में आपसे कई बार क्या कहा है? शर्म किस बात की? आखिर शर्म की बात क्या है? हाँ हाँ, मुझे नहीं पता कि प्रश्न को बेहतर तरीके से कैसे वाक्यांशबद्ध किया जाए। आप तब लज्जित होते हैं जब जिस पर आपने भरोसा किया वह विफल हो जाता है। तो यह एक अद्भुत कुर्सी है। यह स्पष्ट रूप से सबसे अच्छी कुर्सी है जो मैंने कभी देखी है। मैं बस इतना जानता हूं कि यह कुर्सी मुझे निराश नहीं करेगी और मैं उसमें गिर जाता हूं और वह गिर जाती है। और आप क्या करते हो? हंसना। और बस वही दुनिया है। हां, तुमने अपने ईश्वर पर भरोसा किया और तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें विफल कर दिया। आपने अपने भगवान पर भरोसा किया और आप निर्वासन में हैं, है ना? भगवान यहाँ पद 4 में क्या कहते हैं? आपको शर्म नहीं आएगी। आप अतीत की, अपनी युवावस्था की, अपनी विधवापन की, अपने राष्ट्र और अपनी संपत्ति से वंचित होने की शर्म को भूल जाएंगे। और फिर श्लोक 5 में ईश्वर के लिए 5 शब्द हैं। क्या रहे हैं? पहला क्या है? निर्माता, सर्वशक्तिमान प्रभु जो वस्तुतः स्वर्ग की सेनाओं का स्वामी है। आपके पति, और क्या? आपका उद्धारक, इसराइल का पवित्र है, वह अलग है। हाँ, अब मुझे लगा कि यहाँ कोई छठा है। यह सारी पृथ्वी का परमेश्वर है, क्या वह सही है? यह पुराने नेक्रोशास्त्र की तरह है। मेरे हाथ में पूरी दुनिया है, तो अगर वह मेरा निर्माता है तो मेरे लिए इसका क्या मतलब है? वह जानता है कि मैं कहां से आया हूं। यदि वह स्वर्ग की सेनाओं का स्वामी है तो मेरे लिए इसका क्या अर्थ है? उसे कोई हरा नहीं सकता, और अगर मैं उसका हूं तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। पति, रक्षा करने वाला, निकटतम बंधन। जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से बहुत से लोगों के लिए ईश्वर के बारे में सोचने का प्राथमिक तरीका वह है जो स्वर्ग में बैठकर कह रहा है कि आप बेहतर कर सकते हैं। आप वास्तव में प्रयास नहीं कर रहे हैं, है ना? मेरे पास कुछ अन्य लोग भी हैं जो इस मामले में आपसे कहीं बेहतर हैं, और आप किसी न्यायाधीश के साथ अपने आप को जोखिम में नहीं डालते। आप उससे उतना ही दूर रहें जितना आप रह सकें और बना सकें। वह तुम्हारा पति है। हाँ, करने की कृपा करें। लेकिन यह भाषा किसी अविश्वासी से संवाद करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से बोलती है, आपको वापस लाने का रास्ता ढूंढने के लिए। हाँ डैन, हाँ, हाँ, उद्धारक का इस व्यक्ति के प्रति दायित्व है जो अब निराश्रित है। मैं आपका निकटतम रिश्तेदार हूं, मुझे यहां एक दायित्व मिला है। हाँ, अच्छा, ओ हाँ, 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 इसराइल का पवित्र, उसकी पूजा करनी है। और इसका इन पहले वाले से क्या संबंध है? ठीक है, हम उसकी पूजा करते हैं क्योंकि वह यही है, वह योग्य है। ये सिर्फ एक छोटे भगवान के छोटे गुण नहीं हैं, ये उस व्यक्ति के गुण हैं जो हर चीज से परे हैं, जिसने खुद को इज़राइल के लिए समर्पित कर दिया है। टोनी चेन ने अभी अभी इज़राइल के पवित्र पर निश्चित वक्तव्य लिखना समाप्त किया है, इसलिए वह आपको इसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन मैं मंच छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन उस पारलौकिक का यह विचार जो आसन्न है, आसन्न नहीं यानी अभी के बारे में, आसन्न का अर्थ है तुरंत उपस्थित होना। और यदि बाइबल का कोई अनोखा धर्मशास्त्र है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता है तो वह यही है। सर्वोत्कृष्ट वह जो हर चीज से बिल्कुल अलग है, उसने खुद को एक व्यक्ति के रूप में हमें सौंप दिया है। अरस्तु पारलौकिक की कल्पना कर सकता था, लेकिन निश्चित रूप से पारलौकिक संभवतः एक व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति उस चीज से प्रभावित होता है जिसे उन्होंने अस्तित्व में लाया है, और ऐसा नहीं हो सका। वह अब उत्कृष्ट नहीं होगा, और पुराना नियम कहता है, हाँ आप शायद सही हैं, लेकिन उत्कृष्ट व्यक्ति एक व्यक्ति है। और फिर कुछ अर्थों में मुझे लगता है कि यही अंतिम बात है ना? यदि ये सब बातें सत्य हैं, तो वह सचमुच सारी पृथ्वी का परमेश्वर है। उसने वह बनाया, उन्होंने इसे भुनाया, उसने इससे शादी कर ली है। तो यह स्पष्ट है कि भगवान एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब श्लोक 7 और 8 को देखें। और वे हमें परमेश्वर के प्रेम और उसकी करुणा के विपरीत उसके क्रोध के बारे में क्या बताते हैं? बिल्कुल, उनका गुस्सा अस्थाई है, लेकिन उनका प्यार और उनकी करुणा, मुझे लगता है कि मैंने मेल के साथ एक मुद्दा बना लिया है। यह बात मैंने वर्षों पहले किसी से सुनी थी, और तब से यह मेरे मन में बसी हुई है। भगवान क्रोधित होते हैं, लेकिन वह प्रेम है। भगवान क्रोधित होते हैं, लेकिन वह प्रेम है। प्रेम उनके चरित्र का अनिवार्य गुण है, अपरिवर्तित और सदैव। और ठीक इसलिए क्योंकि वह हमसे प्यार करता है, वह पागल हो जाता है। इससे उसे गुस्सा आता है कि जिनसे वह इतना प्यार करता है, वे अपने जीवन को इतनी बुरी तरह से भ्रष्ट कर सकते हैं। अगर वह हमसे प्यार नहीं करता, तो उसे नाराज होने की जरूरत नहीं होती। एकदम सही, बिल्कुल माता पिता की तरह। यदि आपको कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या करता है, तो वे अपने जीवन को गड़बड़ कर देते हैं, आप बस यही कहते हैं। लेकिन यदि यह आपका बच्चा है, तो अपने जीवन को गड़बड़ कर रहा है। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन बड़ी दया के साथ मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा। एक क्षण के लिए अति क्रोध में आकर मैंने अपना मुख तुझ से छिपा लिया, परंतु अनंत झिझक के साथ मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे उद्धारकर्ता यहोवा का यही वचन है। गुस्सा। तो आइए भजन 30 श्लोक 5 की ओर वापस जाएं। एक श्लोक जिसे हम में से कई लोगों ने याद कर लिया है, और हम में से कई लोगों को याद रखना चाहिए। उनका गुस्सा तो बस एक पल का होता है, उनका एहसान उम्र भर का होता है। रोने से रात हो सकती है, लेकिन खुशी सुबह आती है। वो अच्छी खबर है, वो अच्छी खबर है। अब करुणा। यदि आप कई अलग अलग अंग्रेजी अनुवादों को देखें, तो आपको कई अलग अलग शब्द मिलेंगे जिनका उपयोग हिब्रू शब्द का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। किंग जेम्स संस्करण में मूल रूप से दया, कोमलता, उपकार और करुणा का उपयोग किया गया था। वे सभी शब्द हमें परमेश्वर और हमारे प्रति परमेश्वर की भावनाओं के बारे में क्या बताते हैं? वह गहराई से परवाह करता है, वह गहराई से परवाह करता है। वह हमारी भावनाओं में प्रवेश कर जाता है। वह वही महसूस करता है जो हम महसूस करते हैं। हिब्रू शब्द वही है, और मैंने आपको यह कई बार बताया है, मूल अर्थ व्यंजन में निहित है। इस मामले में यह RHM है, और इससे जो संज्ञा ली गई है वह गर्भ शब्द है। यह शब्द आमतौर पर बहुवचन में आता है, RHM, और अक्सर अधिक शाब्दिक अनुवाद में इसका अनुवाद कोमलता, कोमलता होता है। वह हमारे प्रति कोमल है, हमारे संबंध में निविदा। हाँ, मेरे द्वारा और क्या किया जा सकता है? हाँ, हाँ। तो पद 10 पर आगे बढ़े। पहाड़ भले ही हट जाएं, पहाड़ियां हट जाएं, परंतु मेरी हैसियत तुमसे न हटेगी। तुम पर दया करने वाले यहोवा का यही वचन है कि मेरी शांति की वाचा न मिटेगी। यहां यह फिर से है। इन 4 श्लोकों में हैसियत और करुणा आती है। हैसियत 2 बार और करुणा 3 बार आती है। मुझे लगता है कि भगवान एक बात स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपसे शांति की इस वाचा को देखने के लिए कहता हूं। और चूंकि इस सप्ताह सिस्टर रूथ भी अपना होमवर्क नहीं कर पाई, तो मेरा मानना है कि आप में से बाकी लोग भी ऐसा नहीं कर पाए। तो आइए संख्या 25.12 को देखें। फिनीस, जब एक हिब्रू आदमी मिद्यान की एक महिला को, जो बाल पोर की उपासक थी, उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए शिविर में लाया, तो उन दोनों को भाले से जमीन पर गिरा दिया। वह काफी गंभीर कार्रवाई कर रहा है। और परमेश्वर ने उत्तर दिया और पद 12 में कहा, देख, मैं उसे शालोम की अपनी वाचा देता हूं। फिर यह खतरनाक है। मुझे अपना व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना पड़ सकता है। मैंने आपसे इस शब्द के बारे में क्या कहा है, जिसका अनुवाद अधिकांश समय शांति के रूप में किया जाता है? इसके पीछे हिब्रू शब्द क्या है? हालचाल। हाँ, हिब्रू शब्द क्या है? किसी को याद है?
शालोम।
हाँ हाँ, तो फिर हम केवल संघर्ष की अनुपस्थिति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम संपूर्णता के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस पर टिके रहें। मैं फिनीस को प्रस्ताव देता हूँ, जो मौलिक रूप से मेरा आज्ञाकारी रहा है, मैं उसे शांति की वाचा प्रदान करता हूँ। अब चलिए इजेकील 34:25 पर चलते हैं। यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, यदि आप भूल गए हैं, यरूशलेम के पतन के बाद अब इजेकील वादा कर रहा है कि वे फिर से घर जा रहे हैं। और इसलिए 34:25 में श्लोक 24 से शुरू करें। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मेरा सेवक दाऊद उनके बीच प्रधान होगा, मैं भगवान हूं, मैं बात कर ली है, मैं उनसे मेल की वाचा बांधूंगा और जंगली पशुओं को देश से निकाल दूंगा कि वे जंगल में निडर रहें और जंगल में सो सकें। अब इजेकील 37:26, मेरे नौकर, चलो 24 से शुरू करें। मेरा सेवक दाऊद उन पर राजा होगा और उन सब का एक ही चरवाहा होगा, वे मेरे नियमों के अनुसार चलेंगे और मेरी विधियों के मानने में चौकसी करेंगे, वे उस देश में बसेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था, जहां तुम्हारे पुरखा रहते थे, वे और उनके बच्चे और उनके पोते पोतियां सदैव वहीं रहेंगे, और मेरा सेवक दाऊद सदैव उनका प्रधान रहेगा, मैं उनके साथ मेल की वाचा बांधूंगा और वह उनके साथ सदा की वाचा होगी। ठीक है, तो फिर आइए नए नियम पर चलते हैं। रोमियो 5:1, इसलिए चूंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारी शांति है। और फिर 10, क्योंकि जब हम शत्रु थे तब उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ था, तो अब जब हमारा मेल हो गया है तो हम उसके जीवन के कारण और भी अधिक बचेंगे। तो जब परमेश्वर हमें शांति की वाचा प्रदान करता है तो वह क्या दे रहा है? आश्चर्यजनक, संपूर्ण और संपूर्ण मिलमिलाप और शालोम। हाँ हाँ, यह सिर्फ युद्ध विराम नहीं है, यह मिलमिलाप है, इसे हमारे भगवान के साथ लाया जा रहा है। ओह माय, कैसा वादा है। ठीक है, हम पहले ही प्रश्न 6 के बारे में बात कर चुके हैं, आइए 54:11-17 तक आगे बढ़े। आपके अनुसार 11 और 12 में दिए गए इस विवरण में कीमती पत्थरों का क्या मतलब है? हे दुखी तू तूफान से पीड़ित और जिसे शांति न मिली हो, देख मैं तेरे पत्थरों को सुरमे में जड़ूंगा और तेरी नेव नीलमणि से रखूंगा। मैं तुम्हारे शिखर सुलेमानी पत्थर के, तुम्हारे द्वार कारबुनकल के और तुम्हारी सारी दीवारें बहुमूल्य पत्थरों की बनाऊंगा। इसका क्या मतलब है? ठीक है, पुजारी ने जो छाती का टुकड़ा पहना था उस पर 12 कीमती गहने थे और कंधे के टुकड़े पर भी ये गहने थे। ठीक है ठीक है, इसका क्या महत्व है? उन्हें आभूषणों के रूप में क्यों वर्णित करें? सुंदरता, कीमत, धैर्य, यह इज़राइल के 12 काल का प्रतिनिधित्व करता है और वास्तव में यहाँ का मंदिर महान मसीहाई स्थान का केंद्र बनने जा रहा है। उहा उहा, यह पहले से भी बेहतर होगा, पहले से कहीं ज्यादा बेहतर। हाँ हाँ, यह निश्चित रूप से यह व्यक्त करने का एक तरीका है कि वे उसके लिए कितने मूल्यवान हैं। यह शहर कितना स्थायी है, और आपने देखा है कि हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन जो संदर्भ मैंने आपको प्रकाशित वाक्य में दिया था वही बात इस शहर के स्वर्ग से उतरने का वर्णन करती है और स्पष्ट रूप से जॉन द रेवलेटर यशायाह को पढ़ रहा है। उसी तरह की तस्वीर बताती है कि हम भगवान के लिए कितने अनमोल हैं, हम उसके लिए कितने महंगे हैं और वह हमें कितना महत्व देता है। और फिर श्लोक 13 और 14 में वह भाषण के उस प्रकार से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं वास्तव में एक ही चीज के बारे में सोचता हूँ, लेकिन अलग अलग शब्दों में। वह वहाँ 13 और 14 में क्या कह रहा है? कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। विशेषकर 14 में लोगों का बहुमूल्य गुण क्या होगा? धर्म में स्थापित एक सुंदर सेटिंग में जड़े हीरे की तरह आप धार्मिकता में स्थापित होंगे। निःसंदेह इस संपूर्ण प्रश्न पर सुधार के लिए यह संपूर्ण संघर्ष है। और कई मायनों में हम आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका में इंजील धर्मशास्त्र में इससे निपट रहे हैं। हम पुस्तक के अंतिम भाग तक इसके बारे में फिर से बात करेंगे। और लूथर ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। जॉन वेस्ले ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। मैं यथासंभव प्रयास करता हूँ। वह सब कुछ करें जो मैं करना जानता हूँ, और अंत में मुझे कहना होगा कि नहीं, मैं असफल हो गया हूँ। इसलिए लूथर के लिए यह एक महान खोज थी जब उसने नए नियम के लेख को, विशेषकर पॉल को, यह कहते हुए पाया कि आपको मसीह के माध्यम से धर्मी गिना जा सकता है। लूथर के लिए वह कितना अमूल्य सत्य था। वह भगवान का शुक्र है। मैं वह बनने के लिए यह संघर्ष छोड़ सकता हूँ जो मैं नहीं बन सकता। मैं बस यह जान सकता हूँ कि मसीह में मैं धार्मिकता में स्थापित हूँ। वेस्ले के लिए भी यह सच था, लेकिन वेस्ली को कुछ ऐसा समझ आया जो लूथर से चूक गया, और वह यह है कि मैं न केवल मसीह के माध्यम से धर्मी गिना जा सकता हूँ, मैं मसीह के माध्यम से धर्मी बनने में सक्षम हूँ। वास्तविक अर्थों में सुधार को पूरा करने में जॉन वेस्ली को लग गया। और दुर्भाग्य से आज उत्तरी अमेरिकी ईसाई धर्म प्रचार में बहुत बड़े पैमाने पर हमने यह दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु खो दिया है। इसलिए मैं मसीह के माध्यम से धर्मी गिना गया हूँ, इसलिए आप मुझसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। बेशक मैं अपने आयकर पर झूठ बोलूंगा। निःसंदेह मैं अपनी पत्नी को धोखा दूंगा। मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ इंसान हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैं मसीह के द्वारा धर्मी गिना गया हूँ। और जॉर्ज बारना का कहना है कि खोए हुए लोगों की जीवन शैली और दोबारा जन्मे लोगों की जीवन शैली में कोई अंतर नहीं है। और मैं कहता हूँ कि यह एक भयानक भयानक चीज है। क्या धार्मिकता भी ईश्वर के साथ सही स्थिति में नहीं है? तो संपूर्ण विचार यह है कि यह धार्मिकता केवल जीवित रिश्ते में ही मौजूद हो सकती है। हाँ, मुझे लगता है कि यह सच है। हालांकि जज वाली बात इतनी प्रभावशाली है कि जज जिस छवि के बारे में घोषणा करता है कि आपकी स्थिति सही है, वह बस इसकी घोषणा करता है, और वही जो है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वह पति है, अगर वह उद्धारक है, अगर वह निर्माता है, अगर वह ये सभी अन्य चीजें हैं, तो आप पूरी तरह से सही हैं, तो बात समझ से परे हैं। सही रिश्ते के बिना सही स्थिति असंभव है, और एक सही रिश्ता है जीना। परंतु धार्मिकता की वह महान महान पंक्ति तुम स्थापित हो जाओगे। हीरे को सेटिंग में स्थापित किया गया है। ये हम हैं। ठीक है, हमें आगे बढ़ना होगा। आइए यहां देखें। मसीह में मैं धार्मिकता में स्थापित हूं। वेस्ले के लिए भी यह सच था। हाँ, हम करते हैं। ठीक है, अब यह बात यहां अनुवादों में थोड़ा बहुत चलन में आ जाती है। यदि आप श्लोक 17 को देखें तो आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तो हर उस जीभ को चुप कर देगा जो न्याय करते समय तेरे विरुद्ध उठेगी। यह प्रभु के सेवकों की विरासत है। अब आपके अनुवाद इस अंतिम वाक्य से क्या कहते हैं? मेरी ओर से उनका समर्थन। क्या किसी के पास कुछ अलग है? और उनकी धार्मिकता मेरी ओर से है। वास्तविक शब्द धार्मिकता है। अब यहाँ जो चल रहा है वह 49 से 55 तक कई स्थानों पर है, क्षमा करें 40 से 55 तक जिस धार्मिकता के बारे में बात की गई है वह भगवान की धार्मिकता है और उन्हें वितरित करना उनकी धार्मिकता है। भगवान उनके लिए सही काम करेंगे और वह है उन्हें छुटकारा दिलाना। उन्हें बंदी बनाना ही उसके लिए उचित था, लेकिन इस भगवान के लिए उन्हें वहां छोड़ना ठीक नहीं होगा। यह भगवान मुक्तिदाता है और इसलिए इस अनुभाग के माध्यम से बार बार, इसलिए यदि आप उस श्लोक को देखें तो यह प्रभु के सेवकों की विरासत और उनकी धार्मिकता है, अर्थात उनका उद्धार है जो मुझसे आता है। लेकिन जब आप पुष्टि कहते हैं तो आप उस पूरे गुण को भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे लिए सही काम करता है और हमसे अपेक्षा करता है कि हम बदले में सही तरीके से जिएं। लेकिन जब आप इसे केवल पुष्टि के रूप में अनुवादित करते हैं तो आप उस पूरे स्वाद को खो देते हैं। यह प्रभु के सेवकों का भाग और मेरी ओर से उनका धर्म है, और मैं वहां जो कह रहा हूं वह यह है कि यह शब्द दोतरफा है। वह धार्मिकता क्या है जो परमेश्वर उन्हें देता है? यह मुक्ति है। परंतु परमेश्वर उन्हें जो धार्मिकता देता है वह जीवन जीने का एक नया तरीका भी है, और जब आप इसका अनुवाद केवल पुष्टि के रूप में करते हैं तो आप इसके इस पक्ष को भूल जाते हैं। भगवान मुझे सही ठहराएंगे, ओह गुड़ी, यह बहुत अच्छा है, अब मैं नर्क की तरह जी सकता हूं और इससे उसे कुछ और बार मुझे सही साबित करने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ, जीत इस मायने में बहुत अच्छी है कि कम से कम यह दुश्मन से मुक्ति की जीत और जीवन जीने के नए तरीके की जीत को खुला छोड़ देती है। हाँ, आपके पास कौन सा संस्करण है? ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 55। ऐसा क्या है कि भगवान उन्हें आने और मुफ्त में पाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? मुक्ति, हाँ। आइए पहले अधिक शाब्दिक बने। जीविका, शराब, दूध, रोटी। मेरी बात ध्यान से सुनो और जो अच्छा है वही खाओ। गरिष्ठ भोजन का आनंद उठाएं। अब फिर से ये लोग गुलामी में हैं। लगभग निर्विवाद रूप से वे गरीबी में रहे हैं, और इसलिए भगवान उन्हें आने और धन पाने के लिए आमंत्रित करते हैं। निःसंदेह यह कोई संयोग नहीं है कि यीशु ने अंतिम भोज में शराब और रोटी का उपयोग किया था। जीवन के लिए मूल बातें। ऐसी स्थिति में जहां अधिकांश पानी दूषित था, शराब को मुख्य रूप से नशे के रूप में नहीं पिया जाता था, इसे बस जीवन के तरल पदार्थ के रूप में पिया जाता था। तो वह कह रहा है, मैं तुम्हें जीवन की बुनियादी बातें प्रदान कर रहा हूं। यही कारण है कि कोक और डोनट्स के साथ सामंजस्य स्थापित करना काम नहीं करता है। अब यह कुछ लोगों के लिए बुनियादी बात है, लेकिन सामान्य तौर पर नहीं। मुद्दा यह है कि यही मूल बातें हैं, और वह यही पेशकश करता है। अब वह कहता है, यहां पद 3 में फिर से यह शाश्वत वाचा की भाषा है। यदि आप ध्यान से सुन रहे थे तो आपने इसे यहेजकेल में उठाया था, और वह इस वाचा की तुलना दाऊद के साथ की वाचा से करता है। फिर यदि आप यहेजकेल में ध्यान से सुन रहे थे तो आपने वहां वह नोट सुना, दाऊद के साथ वाचा कब तक है? सदैव, शाश्वत, और उसी रीति से वह उन्हें अनंत वाचा भी देता है। और पद 3 के अंत में जो भाषा है वह हिब्रू है, जिसका अनुवाद करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह दाऊद का और अनंत काल का हेसेड है। उसी प्रकार का संकोच मैंने डेविड को भी दिखाया है, एक चिरस्थाई हिचकिचाहट जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। तो यहाँ यह विषय फिर से है, मेरा गुस्सा अस्थाई है, मेरी झिझक हमेशा के लिए है, यह मैं ही हूं। जॉन ने बिल्कुल सही कहा, और जब उन्होंने अपना पत्र लिखा तो उनके मन में कोई नया विचार नहीं आया। वह समझ रहा है कि पुराना नियम हमें क्या सिखाता है। अब पद चार में दाऊद का क्या कार्य था? एक गवाह और एक नेता। अब वह कहता है, मैं तुम्हें वैसी ही वाचा देता हूं जैसी मैंने दाऊद को दी थी। परमेश्वर के लोगों के लिए इसका क्या अर्थ है? हमने पहले गवाहों के बारे में बात की है। उन्हें क्या करने और उसके गवाह बनने के लिए बुलाया गया था? अपने आसपास के सभी लोगों से बिल्कुल अलग। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बनना था कि वह अकेले ही ईश्वर हैं। वहां कोई और नहीं है। लबबोलुआब यह है, हाँ, हाँ। और फिर वे नेता होंगे। और श्लोक पांच हमें बताता है कि नेतृत्व कैसे करें। नेतृत्व क्या? उन राष्ट्रों का नेतृत्व करना जिन्हें आप नहीं जानते। जो राष्ट्र तुम्हें नहीं जानता वह तुम्हारे पास दौड़ेगा। क्यों? खींचने की शक्ति के कारण। तेरा परमेश्वर यहोवा इसराइल का पवित्र, और उसने क्या किया है? उसने तुम्हें क्या दिया है? वैभव, वैभव। फिर मुझे आशा है कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है। पुराने नियम में महिमा दृढ़ता है, यह महत्वपूर्ण है, यह हकीकत है, यह क्षणभंगुर सूर्यास्त नहीं है। आप परमेश्वर की महिमा में भागते हैं, आप एक ईंट की दीवार में भागते हैं। लोग तंबू में नहीं जा सके क्योंकि यहोवा का तेज उसमें भर गया था। और भगवान कहते हैं कि मैं अपनी महिमा तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ। यीशु अपनी महायाजकीय प्रार्थना में कहते हैं, हे पिता, मैंने उनके साथ वह महिमा साझा की है जो आपने और मैंने दुनिया की नींव से पहले साझा की थी। भगवान हमारे साथ क्या करना चाहता है? वह हमें वास्तविक बनाना चाहता है। राष्ट्र का? हाँ, मुझे लगता है कि यह अधिक सामान्य है। मुझे लगता है कि यह उन सभी के लिए खड़े राष्ट्र का विचार है। और यदि आप अध्याय दो श्लोक एक से पांच तक वापस जाते हैं तो याद रखें कि यही वही बात है जिसकी भविष्यवाणी वहां की गई थी। आइए वापस जाएं और इसे देखें। पद दो, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और सब जातियां उसकी ओर प्रवाहित होंगी। बहुत सी जातियां आकर कहेंगी, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं कि वह हमें अपने मार्ग सिखाए और हम उसके पथों पर चल सकें। क्योंकि सियोन से व्यवस्था और यरूशलेम से यहोवा का वचन निकलेगा। यह रहा। और आपकी वास्तविकता लोगों को आपकी ओर आकर्षित करने वाली है। इसीलिए कई मायनों में ईसाई धर्म की सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब हम सीखते हैं कि नाटक अभिनेता कैसे बने। मैं दृश्य पर हाल की चीजों और दर्शकों में खड़े लोगों की छवि अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। हाँ, हाँ। अक्सर हम भूमिका निभाना सीखते हैं क्योंकि वास्तविकता को जीने की तुलना में यह आसान और सस्ता है। मैंने 40 वर्षों से सेमिनरी के छात्रों से कहा है, सेमिनरी आपकी आत्मा के लिए आपके जीवन का सबसे खतरनाक अनुभव हो सकता है क्योंकि आप सीखते हैं कि आध्यात्मिक हुए बिना आध्यात्मिक कैसे दिखना है। आप प्रार्थना करना सीखें। आप सीखिए कि उपदेश कैसे दिया जाता है। आप सीखते हैं कि ये चीजें कैसे करनी हैं, और यह सब सतही है। आप सीख जाते हैं कि ईश्वर के बारे में कैसे बात करनी है, और आप उससे बात करना बंद कर देते हैं। अब क्या मैं मदरसा के खिलाफ हूं? नहीं, यह 40 वर्षों से मेरा रैकेट है। लेकिन यह जानलेवा हो सकता है और ईसाई जीवन में भी ऐसा ही है। हम सीखते हैं कि सही चेहरा कैसे लगाया जाए। अब कभी कभी लोग कहते हैं, ओह ठीक है, मैं आपसे अधिक पवित्र नहीं होना चाहता, मैं वास्तव में तुमसे अधिक अपवित्र हूं। यह भी हकीकत नहीं है। लेकिन हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली उसकी महिमा की वास्तविकता जानने के लिए आपको और मुझे कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? खैर, मुझे लगता है कि यह आगे यहीं आता है। श्लोक 6। जब वह पाया जा सकता है और जब वह निकट है तो इसका क्या मतलब है? आपको उसकी ओर एक कदम बढ़ाना होगा। और क्या? यह सही है। एक क्षण आता है जब उसे पाया जा सकता है। एक क्षण है जब वह निकट है। इसे मत चुकिए, इसे मत चुकिए। मुझे नहीं पता कि यह सच्ची कहानी है या नहीं, लेकिन कहानी यह बताई गई है कि जब एरोन बूर फिलिप्स एंडोवर कॉलेज में छात्र थे तो उन्होंने इसे बुलाया। यह एक हाई स्कूल अकादमी थी, उनका पुनरुद्धार हुआ। वह 17 साल का था और यह पूरे स्कूल में आत्मा का एक आंदोलन था और परमेश्वर उसे दोषी ठहरा रहा था और उसने कहा, हे भगवान, यदि तू मुझे जाने देगा तो मैं फिर कभी तेरा नाम नहीं लूंगा। और कहानी के अनुसार उसे अपने जीवन में फिर कभी दृढ़ विश्वास की भावना महसूस नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि वह कहानी सच है या नहीं, लेकिन यह सच है। ऐसे क्षण होते हैं जब ईश्वर बहुत निकट होता है और उन पलों में हमें उन्हें चूकना नहीं चाहिए। हाँ, क्या ऐसा होगा कि ईश्वर हमेशा निकट है लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है? हाँ, मुझे लगता है कि यह सच है। मुझे लगता है कि यह सच है। मैं अक्सर फिर से छात्रों से बात करता हूँ, अब उतना नहीं, लेकिन ऐसा होता था कि छात्र वास्तव में संवेदनशील होते थे और वे आकर कहते थे, मुझे डर है कि मैंने अक्षम्य पाप किया है। और मैं कहता हूँ, यदि आप डरते हैं कि आपके पास है तो आपने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि अक्षम्य पाप तब होता है जब हम अपने रिसीवर को तोड़ देते हैं और भगवान की कृपा नहीं सुन पाते। अभी इस कमरे में संगीत है, बातचीत हो रही है, हर तरह की चीजें हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में रेडियो रिसीवर नहीं है। यदि हमने ऐसा किया तो हम इसे सुलझाने की कोशिश में पागल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ही होता है। जैसा कि इब्रानियों का कहना है, यदि आप मसीह के लिए उत्कट रहे हैं और एक दिन ऐसा आता है जब आप कहते हैं, ओह, यह सब बकवास का एक समूह था, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाया है और वास्तव में आपने अपने रिसीवर को तोड़ दिया है, अब आप इसे नहीं सुन सकते। हाँ, मैं 1971 में चेरोकी आयोवा में चेरोकी मेंटल इंस्टीट्यूट में था, जो उन पादरियों के लिए एक सेमिनार था जिनसे मेरी मुलाकात शिकागो के नॉर्थ पार्क कॉलेज में हुई थी। यह एक इंजील अनुबंध महाविद्यालय है और वह मुझसे कह रहा था, 1951, तुम्हें पता है, आत्मा असबरी से निकली और स्कूल गई और यह नॉर्थ पार्क तक आ गया। और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही है, आप पवित्र आत्मा को छात्रावासों से गुजरते हुए देख सकते हैं, आप जानते हैं, यह बिल्कुल लगभग दिखाई देने जैसा था। और वह किसके दरवाजे पर आया, अंदाजा लगाओ कौन? उनके पिता एक पादरी थे, ह्यू हेकर, आप जानते हैं, प्लेबुक के संपादक, और उन्होंने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और आप जानते हैं, इससे दूर हो गए। और उन्हें वह मौका 1951 में मिला था। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, यह वास्तव में आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। यह निश्चित रूप से होता है। अब वे कहते हैं, मेरे विचार आपके विचार नहीं हैं, नहीं आपके तरीके मेरे तरीके हैं। इसका क्या मतलब है? आप सीमित हैं। ठीक है, हम सीमित मनुष्य हैं, इसलिए हमारे विचार सीमित हैं और उनके विचार असीमित हैं। और क्या? हाँ, यहां तक कि हमारे सबसे नेक विचार भी उनके आसपास भी नहीं हैं। सीएस लुईस जो कहते हैं वह मुझे पसंद है। वह कहते हैं कि जब हम आखिरकार प्यार से मिलेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्यार के लिए हमारी अवधारणाएं और शब्द कितने अपर्याप्त हैं। हाँ, हम हेसेड नहीं कर सकते, हम हेस्ट नहीं कर सकते, कम से कम बहुत अच्छा तो नहीं। हालांकि मुझे वहां थोड़ा सा बैकअप लेना होगा। मत्ती 5 में यीशु कहते हैं, तुम्हें पूर्ण होना चाहिए जैसे ईश्वर पूर्ण है। और वह स्पष्ट रूप से वहां प्यार के बारे में बात कर रहा है। मुझे एक क्षण के लिए यहां विषयांतर करने दीजिए। डटे रहो। वह कहता है, यदि तुम उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम महसूल लेने वाले से किस प्रकार भिन्न हो? यदि आप उनसे प्यार करते हैं जो पहले आपसे प्यार करते हैं, तो आप दुनिया में किसी से भी अलग कैसे हैं? लेकिन भगवान उसका प्रेम अपने आप में पूर्ण है। इसे शुरू करने के लिए उसे हमारे प्यार की जरूरत नहीं है, और इसे जारी रखने के लिए उसे हमारे प्यार की जरूरत नहीं है। और फिर वह कहता है, तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। उस प्रसंग को देखने से वास्तव में मुझे मदद मिली। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ईश्वर की तरह पूर्णतः परिपूर्ण हो सकें। लेकिन यीशु कह रहे हैं कि आप और मैं एक ही तरह का प्यार रख सकते हैं। समान गुणवत्ता नहीं, समान शक्ति नहीं, लेकिन हम उसी प्रकार का प्रेम रख सकते हैं जैसा आत्मा हमें सक्षम बनाता है। हम उन लोगों से प्यार कर सकते हैं जो हमसे प्यार नहीं करते, और हम उन लोगों से प्यार करना जारी रख सकते हैं जो हमसे प्यार नहीं करते। उस हद तक हाँ, मुझे लगता है कि हम हेसेड कर सकते हैं, परंतु निश्चित रूप से उस मात्रा के साथ नहीं जो ईश्वर करता है। ठीक है, मैं आपको सुझाव दूंगा कि ईश्वर की मुक्ति का मार्ग अनुग्रह है। हमारी मुक्ति का तरीका कमाई है। मैं जीवन भर मेथोडिस्ट रहा हूं, 5वीं पीढ़ी मेथोडिस्ट। मेनोनाइट हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने प्रकाश देखा। मुझे कहना होगा, जिन मेथोडिस्टों को मैं जानता हूं उनमें से अधिकांश स्वर्ग की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। वे भगवान के लिए काफी अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वे अच्छे लोग हैं, वे सचमुच अच्छे लोग हैं, लेकिन विचार यह है कि ईश्वर की स्वीकृति अर्जित करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि नौकर मुझे जो प्रदान करता है उसे प्राप्त कर लूं। यहां मेरे टूटे हुए लहूलुहान शरीर को ले जाओ और इसे अपने स्थान पर पापबलि के रूप में पिता को अर्पित करो। मुझे किसी पापबलि की आवश्यकता नहीं है। मुझे रक्त धर्मशास्त्र की किसी बाल्टी की आवश्यकता नहीं है। मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैं हमेशा एक अच्छा इंसान रहा हूं। मेरी पत्नी को धोखा मत दो, मेरे बिलों का भुगतान। कभी किसी की हत्या नहीं की पापबलि के बारे में यह क्या बात है? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मेरे रास्ते तुम्हारे रास्ते नहीं हैं, मेरे विचार आपके विचार नहीं हैं। परंतु जैसे वर्षा और हिम स्वर्ग से गिरते हैं और वहीं लौट नहीं जाते, वरन प्रियवी को सींचकर उपजाते और उपजाते हैं, और बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देते हैं, उसी प्रकार मेरा वचन भी मेरे मुंह से निकलेगा। यह मेरे पास खाली नहीं लौटेगा, यह मेरा उद्देश्य पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने इसे भेजा है उसमें सफल होगा। आप में से एक या दो लोगों ने कुछ हफ्ते पहले मुझे एक लंबी पुस्तक समीक्षा करते हुए सुना था, अनब्रोकन नामक एक महान पुस्तक। पिछली बार मुझे इससे निपटने में 1.5 घंटा लग गया था, इस बार मैं इसे 1.5 मिनट में कर दूंगा। लुईस मपरिनी, एक धावक, 1936 में एक ओलंपिक धावक। युद्ध में प्रशांत महासागर के ऊपर गोली मार दी गई। दूसरे आदमी के साथ बिताए 47 दिन उनमें से 3 थे। आखिरकार तीसरे की मौत हो गई। फिर आखिरकार पकड़ लिया गया और रूसी जापानी जेल शिविर में ले जाया गया। भयानक दुर्व्यवहार किया गया। एक विशेष व्यक्ति ने उसे चुना क्योंकि यह ज्ञात था कि वह कौन था। जापानी ट्रैक के बहुत बड़े प्रशंसक थे और इसलिए वे इस आदमी के बारे में जानते थे। यह रक्षक उसे तोड़ने के लिए कृत संकल्प था और वह ऐसा नहीं कर सका। अंतः युद्ध के अंत में उसे आजाद कर दिया गया। वह वापस आया और बर्बाद हो गया। पूर्ण विनाश। फ्लैशबैक, बुरे सपने। एक रात अपनी पत्नी को फर्श पर लिटाकर उसका गला घोंटने की कोशिश करते हुए उठा, यह सोचकर कि वह गार्ड है, और 1949 में लॉस एंजल्स में एक तंबू बैठक में गया। एक बड़ा लंबा उत्तरी कैरोलिनियन लड़का उपदेश दे रहा था, ग्राहम नाम का एक साथी। और लुईस मपरिनी ने अपना हृदय प्रभु को दे दिया और वह बदल गया। मेरा वचन अपना उद्देश्य पूरा करेगा जिसके लिए मैंने उसे भेजा है। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। आप खुशी से बाहर जाएंगे और शांति से आगे बढ़ाए जाएंगे। तुम्हारे सामने के पहाड़ और पहाड़ियां गाते हुए आगे बढ़ेंगी। मैदान के सब वृक्ष ताली बजाएंगे। इसके बजाय कांटा सरू के ऊपर निकलेगा। इसके बजाय जंगली सुअर मर्टल के ऊपर आ जाएगा। यह प्रभु के लिए एक नाम बनाएगा, एक चिरस्थाई चिन्ह जो काटा नहीं जाएगा। मैं यहां प्रश्न पूछूंगा और चूंकि हमारा समय चला गया है इसलिए मैं इसका उत्तर दूंगा। हमारे उद्धार के बारे में ऐसा क्या है जो प्रभु के नाम को एक चिरस्थाई चिन्ह बनाता है? हाँ, हम इस बात का प्रमाण है कि वह ईश्वर है। हमारा छुटकारा पाया हुआ जीवन इस बात का संकेत है कि वह परमेश्वर है। वह भगवान हम जैसे लोगों पर अपनी शाश्वत प्रतिष्ठा लटकाने को तैयार है। चुटस्पाह के बारे में बात करें, वह चुटस्पाह है। लेकिन वह करता है। वह यहोवा के लिए नाम बनाएगा और वह सदा का चिन्ह ठहरेगा जो कभी न मिटेगा। तथास्तु। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने अपना एकलौता पुत्र भेजा है और उसके द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं। स्वयं से छुटकारा पाया, हमारे पापों से छुटकारा पाया, हमारे पाखंड से छुटकारा पाया, हे भगवान, इस दुनिया में अपनी महिमा साझा करने के लिए। ओह, जब हम इसमें कमी महसूस करें तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन यह दिखाने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं, आप हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं उसके लिए धन्यवाद। आपकी स्तुति करो, आपके नाम पर, आमीन। तथास्तु।